लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे कलीसिया के उप याजकों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि याजक वर्ग सुसमाचार और निर्धनों के प्रति सत्यनिष्ठ रहते हुए संपूर्ण कलीसिया के लिए एक स्फूर्तिदायक प्रतीक बने। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है कलीसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, हम कलीसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत युवाओं पर संपन्न हुई धर्मसभा 2018 के अतीत युवाओं और विश्व की सारी कलीसिया के नाम संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र क्रिस्तुस विवित अर्थात यीशु क्रिस्त जीवित हैं पर एक चर्चा सुन रहे हैं। आज हम इस प्रेरितिक संबोधन के पांचवें अध्याय की शुरुआत करेंगे, जो युवाओं की राहों के बारे में जिक्र करती है। संत पापा फ्रांसिस पांचवें अध्याय की शुरुआत में युवाओं के सामने एक प्रश्न करते हैं, जो सुसमाचार की ज्योति का संदर्भ प्रस्तुत करता, जो हमारे जीवन में परिवर्तन लाती है। अपने युवा समय को जीने का अर्थ हमारे लिए क्या है? हम सबों को अपने में यह सवाल करने की जरूरत है, क्योंकि युवावस्था जो अपने में एक गर्व करने की अनुभूति से बढ़कर है, हमारे लिए ईश्वर का दिया हुआ एक उपहार है। अपने में युवा होना ईश्वरीय कृपा है, यह हमारे जीवन में उनके आशीष को व्यक्त करता है। संत पापा कहते हैं कि हम अपने में इस मूल्यवान उपहार को व्यर्थ में नष्ट कर सकते हैं, या कृतज्ञतापूर्ण हृदय से इसे ग्रहण करते हुए इसे संपूर्ण जीवन के रूप में जी सकते हैं। ईश्वर युवा काल के दाता हैं और वे हर एक युवा के जीवन में क्रियाशील हैं। युवा काल अपने में हर युवा के लिए यह हमारे लिए खुशी आशा का एक गीत और एक अनुग्रह का समय है। अपने युवा काल का पूरा पूरा उपयोग करना जीवन के इस समय को अपने में अधिक फलहित बनाना है। यह प्रौढ़ता में प्रवेश करने के पहले एक छोटी अवधि मात्र नहीं है। संत पापा फ्रांसिस यीशु ख्रीस्त के जीवन काल की ओर युवाओं का ध्यान आकर्षित कराते हुए कहते हैं कि उनके समय में बचपन से युवा काल की ओर बढ़ना अपने में एक महत्वपूर्ण चरम सीमा थी, जो उत्सव में व्यतीत होता था। जब यीशु ख्रीस्त ने एक व्यक्ति की बेटी को जीवन दिया, जिसकी चर्चा हम संत मार्कुस अध्याय 5 के पद 39 में पाते हैं, शुरू में उन्होंने बच्ची साधारण लड़की शब्द का प्रयोग किया, वहीं दूसरी बार उन्होंने उसे ए युवा लड़की कहकर पुकारा। तलिथा कुम अर्थात ओ लड़की, युवा लड़की कहते हुए यीशु ने उसे नया जीवन दिया और उसे इस जीवन के प्रति और भी उत्तरदायी बनाते हुए उसके लिए युवा काल का द्वार खोल दिया।
जागो उठो आगे बढ़ो मेरे प्यारे युवा साथियों, जागो उठो आगे बढ़ो मेरे प्यारे युवा साथियों, विश्वास में।
युवावस्था जो हमारे लिए अपने व्यक्तित्व को निखारने का एक समय है, हमारे जीवन के सपनों को जमा करने का अवसर प्रदान करता है, जहां हम एक दूसरे के साथ संबंधों में प्रवेश करते हुए एक निरंतरता और संतुलन को प्राप्त करते हैं। यह हमारे लिए जीवन की चीजों का प्रयोग करने, जोखिम उठाते हुए चीजों का चुनाव करने में होता है, जिसके फलस्वरूप हम अपने जीवन को एक परियोजना के रूप में स्थापित करते हैं। जीवन के इस पड़ाव में युवा अपने जीवन में अपने को अपनी जड़ों से अलग किए बिना आगे बढ़ने हेतु बुलाए जाते हैं। वे अपने में स्वायत्तता को प्राप्त करने हेतु प्रेरित किए जाते, जिसका अर्थ यह नहीं है कि वे एकांतवासी जीवन व्यतीत करें। ईश्वर के साथ हमारा प्रेमपूर्ण संबंध और उसके फलस्वरूप लोगों के साथ अपने जीवन को साझा करना हमें अपने जीवन में सपने देखने से नहीं रोकता है। ये सारी चीजें हमारे जीवन और जीवन के क्षितिज को संकीर्ण नहीं बनाती हैं। ठीक इसके विपरीत प्रेम हमारा मूल्यांकन करता है, हमें प्रोत्साहित करता और हमें एक बेहतर तथा और भी सुंदर जीवन जीने को प्रेरित करता है। युवाओं के जीवन और उनके हृदयों में व्याप्त सपनों के सैलाब को हम बेचैनी के रूप में संक्षेपित कर सकते हैं। संत पापा पॉल छाटवे इसके बारे में कहते हैं, अपने जीवन की बेचैनी में बहुधा हम अपने में यह अनुभव करते हैं कि जीवन में आशा की एक किरण उपस्थित है। अभावों के कारण बेचैनी जो नए क्षितिज के खुलने से पहले उत्साह के साथ संयुक्त होती, वह हम में एक तरह से साहस का संचार करती है, जिसकी बदौलत हम अपने जीवन में खड़े होते और प्रेरित कार्यों के लिए उत्तरदायित्व लेने को तैयार होते हैं। यह स्वास्थ्य जीवन की बेचैनी युवाओं में विशिष्ट होती है, जो हर युवा के हृदय में व्याप्त होती है, जो उसे सदा युवा, खुला और उदार बनाती है। हमारे जीवन में सच्ची शांति का सह अस्तित्व गहरी असंतोष में होता है। संत अगुस्टिन कहते हैं, तूने हमारी सृष्टि अपने लिए की है हे ईश्वर, और हमारे हृदय अपने में तब तक व्याकुल हैं जब तक वे तुझ पर आराम नहीं पाते हैं। संत पापा फ्रांसिस अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहते हैं कि कुछ समय पहले मेरे एक मित्र ने मुझसे पूछा कि मैं एक युवा में क्या देखता हूँ। मैंने अपने उत्तर में कहा, संत पापा कहते हैं, मैं उनमें एक राह की खोज करता हुआ पाता हूँ। वह अपने खुद के पैरों में उड़ने की चाह रखता है। वह दुनिया का सामना करता और दुनिया के क्षितिज को भविष्य की आशा के साथ साथ धूमिल निगाहों से देखता है। एक युवा व्यस्क की तरह अपने दोनों पैरों में खड़ा होता है, यद्यपि वह व्यस्क की भांति नहीं होता जिसके दोनों पैर समानांतर हों। उसका एक पैर सदा आगे की ओर होता है, जिसमें आगे बढ़ने निकल पड़ने की चाह है। वह आगे दौड़ने की चाह रखता है। युवाओं के बारे में कहना उनकी प्रतिज्ञाओं और उनकी खुशी का जिक्र करना है। युवाओं में बहुत अधिक शक्ति है, वे अपने जीवन में आशा के साथ आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं। एक युवा जीवन की प्रतिज्ञा है, जिसमें हम एक निश्चित दृढ़ता का दीदार करते हैं। वह अपनी मूर्खता में अपने को भ्रम में डाल देता और उसमें वह लचीलापन है जिसके कारण वह अपने को भ्रम से बाहर निकाल सकता है। संत पापा आगे कहते हैं कि अपने जीवन की इस परिस्थिति से कुछ युवागण घृणा करते हैं, क्योंकि वे अपने को बच्चों की तरह बनाए रखना चाहते या अनिश्चित काल तक अपनी किशोरावस्था में बने रहना चाहते हैं, जिससे वे निर्णयों के संबंध में अपने को दूर रख सकें। निश्चितता का भय उन्हें निर्णय लेने के संबंध में एक तरह से पंगु बना देता है। फिर भी हम युवाओं को रोक नहीं सकते हैं। यह चुनाव करने की आयु होती है जो उन्हें मोहित करती और वे अपने में बहुत बड़े उत्तरदायित्व का एहसास करते हैं। युवा अपने में व्यावसायिक, सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्र के अलावे और भी कई स्तरों पर अपने निर्णय लेते हैं, जो उनके जीवन को एक तरह से निश्चित आकार प्रदान करती है। वे अपने प्रेम के संबंध में निर्णय लेते, अपने जीवन साथी का चुनाव करते और परिवार की शुरुआत करते हैं। संत पापा फ्रांसिस इन सभी विषयों का जिक्र और अधिक स्पष्ट रूप से अपने अंतिम अध्याय में करते हैं, जो हमारे लिए व्यक्तिगत बुलाहट और आत्म मंथन के बारे में कहता है। श्रोताओ, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा के विश्व प्रेरित पत्र क्रिस्तुस विवित अर्थात यीशु ख्रिस्त जीवित हैं पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इसके बारे में अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
करके दिखाना है आज हमें, वक्त जल्दी ही निकल जाता है, कुछ करके दिखाना है आज हमें, वक्त जल्दी ही निकल जाता है। दुख दर्द में इंसान डूबा है, प्यार के प्यासे मसीह पुकारे, दुख दर्द में इंसान डूबा है, प्यार के प्यासे मसीह पुकारे।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने 18 मई को पोलैंड के क्राको एवं विश्व के युवाओं को एक संदेश भेजा, जो संत पापा जॉन पॉल द्वितीय के जन्म की शतवर्षीय जयंती मना रहे हैं। संत पापा ने संदेश में लिखा, प्यारे युवाओं, इस साल हम संत पापा जॉन पॉल द्वितीय के जन्म का 125 साल मना रहे हैं। यह मेरे लिए सुंदर अवसर है कि मैं आप क्राको के युवाओं को संबोधित करूं, यह याद करते हुए कि वे युवाओं को कितना अधिक प्यार करते थे। संत पापा जॉन पॉल द्वितीय कलीसिया और आपकी मातृभूमि पोलैंड के लिए ईश्वर के एक वरदान है। पृथ्वी पर उनकी जीवन यात्रा, जो 18 मई 1920 को वडोवाइस में शुरू हुई थी और 15 साल पहले रोम में समाप्त हुई, वह जीवन के लिए उत्साह एवं ईश्वर के रहस्य, विश्व एवं मानव जाति के लिए सम्मोहन से पूर्ण थे। मैं उन्हें करुणा के एक महान व्यक्ति के रूप में याद करता हूँ। मैं उनके प्रेरितिक विश्व पत्र दिवेस इन मिस्री कोर्दिया, संत फाउस्टीना की संत घोषणा और दिव्य करुणा रविवार की स्थापना की याद कर रहा हूँ। ईश्वर के करुणावान प्रेम के आलोक में उन्होंने महिलाओं एवं पुरुषों की बुलाहट की विशेषता और सुंदरता को पहचाना। उन्होंने बच्चों, युवाओं एवं वयस्कों की आवश्यकताओं को समझा तथा सांस्कृतिक एवं सामाजिक स्थिति पर ध्यान दिया। इस तरह सभी ने उनका अनुभव किया। आज आप भी उन्हें महसूस कर सकते हैं और उनके जीवन एवं शिक्षा को जान सकते हैं, जो सभी के लिए इंटरनेट में उपलब्ध है। प्रेम और चिंता संत पापा जॉन पॉल द्वितीय की विशेषता थी। उनकी शिक्षाएं कठिनाइयों का ठोस समाधान खोजने और आधुनिक परिवारों के सामने आने वाली चुनौतियों का एक सुरक्षित बिंदु है। व्यक्तिगत एवं पारिवारिक समस्याएं पौत्रता और आनंद के मार्ग पर उनके लिए बाधक नहीं थी। न ही उनकी माता, पिता और भाई को खोने का दुख उन्हें रोक सका। एक विद्यार्थी के रूप में उन्होंने नाजीवाद के अत्याचार का सामना किया, जिसने उसके कई मित्रों को ले लिया। युद्ध के बाद एक पुरोहित एवं धर्मदर्श के रूप में उन्हें नास्तिक साम्यवाद का सामना करना पड़ा। कठिनाइयां चाहे बहुत मुश्किल क्यों ना हो, वे परिपक्व और विश्वास के प्रमाण हैं, जिन पर ख्रिस्त की शक्ति द्वारा ही जीत पाया जा सकता है। व्यक्ति जो अपने आप को पूरी तरह जानना चाहता है, वह अपने बेचैन, अनिश्चित और अपनी कमजोरियों द्वारा अपने जीवन एवं मृत्यु से ख्रिस्त के निकट आता है। इस तरह वह अपने पूरे अस्तित्व के साथ ख्रिस्त में प्रवेश करता है। संत पापा ने कहा कि प्यारे युवाओं, यही मैं आप सभी से आशा करता हूँ कि ख्रिस्त आपके संपूर्ण जीवन में प्रवेश करे, और उम्मीद करता हूँ कि संत पापा जॉन पॉल द्वितीय के जन्म की शतवर्षीय जयंती आप सभी में यीशु के साथ साहस से चलने की चाह उत्पन्न करे। मैं आप सभी को संत पापा जॉन पॉल द्वितीय की मध्यस्थता को सपोर्ट करता हूँ और आपको पूरे हृदय से आशीष प्रदान करता हूँ। संत पापा जॉन पॉल द्वितीय के जन्म की 100वीं जयंती को 18 मई को विश्व के विभिन्न हिस्सों में मनाया गया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उनकी 100वें जन्म दिवस पर विश्व भर में उनकी याद की गई। उन लोगों में से एक है पोलैंड के प्रमुख रबी मिखाइल। रविवार को उन्होंने कहा कि किसी दूसरे संत पापा ने दुखद घावों को चंगा करने के लिए उनसे अधिक काम नहीं किया है और उनके समान समयवाद विरोधी विपत्ति को प्रभावशाली ढंग से कम करने का प्रयास किया है। रब्बी ने गौर किया है कि संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने यहूदी समुदाय के साथ संपर्क कर साहसिक कदम उठाया, लॉकडाउन के कठिन समय में साथ देने एवं संत माता में अर्पित दैनिक ख्रिस्त्याग में सहभागी होने का अवसर प्रदान करने के लिए संत पापा फ्रांसिस को धन्यवाद देते हुए लाखों लोगों ने संदेश और तस्वीर भेजी है। संत माता में संत पापा फ्रांसिस द्वारा दैनिक मिसा बलिदान की शुरुआत 9 मार्च को हुई थी और इसका अंत 18 मई को हुआ। संत पापा फ्रांसिस ने इसके प्रथम दिन ख्रिस्त्याग शुरू करते हुए कोविड-19 से पीड़ित मरीजों, डॉक्टरों, नर्सों, स्वयंसेवकों, उनके परिवार वालों, वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों और जेल के कैदियों के लिए प्रार्थना की थी। संत पापा फ्रांसिस ने संत मारिया फाउस्टिना कोलावास्का के पर्व को विश्वव्यापी कलीसिया के लिए एक वैकल्पिक यादगारी के रूप में 5 अक्टूबर को मनाने की घोषणा की। संत फाउस्टिना ने प्रभु येसु ख्रिस्त में पिता ईश्वर के करुणावान चेहरे को देखा और उनका संदेश वाहक बन गई। संत मारिया फाउस्टिना का जन्म पोलैंड में 1905 को हुआ था और उनका निधन क्राकोव में 1938 को हुआ। उन्होंने अपने छोटे जीवन काल को दया की हमारी माता मरियम की धर्म बहनों के साथ व्यतीत किया। ईश्वर द्वारा प्राप्त बुलाहट को उन्होंने उदारता पूर्वक एक गहरी आध्यात्मिकता के साथ जिया। अपनी आत्मा की डायरी में उन्होंने प्रभु के साथ मुलाकात का वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रभु ने सभी की भलाई के लिए उनके माध्यम से कार्य किया। वे जो प्रेम और दया है उन्हें सुनने के द्वारा वह समझ गई कि मानव की कोई भी दुष्टता उनकी दया से बड़ी नहीं है, जिसको वे ख्रिस्त के हृदय से उंडेलते रहते हैं। इस तरह वे दुनिया भर में दिव्य करुणा का प्रचार करने और उनसे प्रार्थना करने के लिए समर्पित आंदोलन की प्रेरणा बन गईं। कोरोना वायरस महामारी के समय हम संत पापा जॉन पॉल द्वितीय से प्रार्थना करें कि वे हमारी मध्यस्थता करें। संत पापा जॉन पॉल द्वितीय हमारी पीड़ा और दुखों को जानते हैं। हम प्रार्थना करें कि वे हमारे विश्वास को सुदृढ़ कर दें, ईश्वर पर भरोसा को बढ़ा दें कि वे हमारी चिंता करते हैं। उक्त बात मुंबई के महाधर्मदश कार्डिनल ओस्वाल्ड ग्रेसिस ने कही। उन्होंने संत पापा जॉन पॉल द्वितीय के जन्म दिवस की शतवर्ष जयंती के उपलक्ष्य में ख्रिस्त्याग अर्पित किया। उन्होंने कहा कि संत पापा जॉन पॉल द्वितीय मदर तेरेसा के समान विश्वास में सुदृढ़, निर्भीक और करुणा से पूर्ण थे। सन 1986 में अपने 10 दिवसीय प्रेरित यात्रा में संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने मदर तेरेसा के साथ निर्मल हृदय का दौरा किया था और अपने दौरे के अंत में उन्होंने कहा था, निर्मल हृदय आशा का स्थान है। महामारी के संकट काल में पूरी दुनिया वैक्सीन की खोज में लगी है। कोरोना वायरस से बचने के लिए लोग तरह तरह के उपाय अपना रहे हैं। सोशल मीडिया में कई प्रकार की दवाइयां भी बताई जा रही हैं, जिनको बिना जाने सेवन करने पर स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। इसी प्रकार की घटना आंध्र प्रदेश में देखने को मिली। भारत में कोरोना वायरस से अब तक 1,00,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।